ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर सेवाओं में सदा उमंग उत्साह, नवीनता लाने वाले अथक सेवाधारी, सभी को संगठन में साथ लेकर चलने वाले उदाहरण मूर्त, अपने नाम के ही अनुरूप इस यज्ञ की शोभा कहें या रौनक, आदरणीय भारत भूषण भाई जी का मधुबन की इस पावन भूमि पर स्थित विशाल डायमंड हॉल में हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका हर्षित चेहरा और योग युक्त जीवन अनेकों के लिए प्रेरणादायी है। योग के सब्जेक्ट में आपकी गहन रुचि कितनी है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आप अक्सर कई कई घंटों तक लगातार परमात्मा की याद में तल्लीन हो जाते हैं, चाहे छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी समस्या, आप योग में बैठकर ही उसका समाधान निकालते हैं। आपका यदि मैं संक्षिप्त में परिचय दूं, तो आप सन 1977 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आए और सन 1978 में ईश्वरीय सेवाओं के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वर्तमान समय आप साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ ही पानीपत सब जोन के मुख्य संयोजक और पानीपत ज्ञान मान सरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशक भी हैं। आप दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता हैं और लगभग 50 से भी अधिक देशों में जाकर आपने मन प्रबंधन, सकारात्मक सोचने की कला, सफलता का रहस्य और आपदा प्रबंधन जैसे अनेकानेक विषयों पर गहराई से प्रकाश डाला और हजारों लोगों के बीच अपने प्रेरणादायी बोल से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आपने संस्कार, साधना और दूरदर्शन जैसे चैनल्स में प्रेरक वार्ता देकर ईश्वरीय सेवाओं को गति प्रदान की है। इसके साथ साथ आपने मानव कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी नवीनतम सेवाओं से कई उपलब्धियां और सम्मान भी हासिल किए हैं। ऐसे अथक सेवाधारी योगी तपस्वी आदरणीय भूरत भाई जी, भारत भूषण भाई जी से अनुरोध करूंगी कि आप आज का जो बहुत ही सुंदर विषय है कि हम अपने कड़े संस्कारों को भस्म कैसे करें, इस पर आप रोशनी डालें। आदरणीय भ्राता भारत भूषण भाई जी, ओम शांति।
थैंक यू शिवांगी बहन। ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय कितना सुंदर है, कड़े संस्कारों को कैसे भस्म करें। क्योंकि कितनी बार बाबा हम बच्चों को, बाप दादा, बार 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 एक एक संस्कार पे बाबा रोशनी डाल के हम बच्चों को प्रतिज्ञा कराते, कभी संकल्प कराते, कभी कुछ, तो हम सब उसके अनुसार हम देखें हम सचमुच जो है कितना हमने संस्कारों पर विजय प्राप्त की। मुझे याद आता है कई बार हम कई स्थानों पे भट्टी कराने जब जाते हैं, बाद में जो कई पुरुषार्थी आत्माएं जब मिलती हैं, तो वो सीन देखा नहीं जाता कि वो रोने तक लग जाते हैं, आंसू बहाते हैं। किस चीज पे? अपने ही, यानी कि दो प्रकार के, एक तो वो जो दूसरों से दुखी हैं, एक वो जो परिस्थितियों से दुखी हैं, घर में किसी पार्टनर से, किसी से दुखी हैं, पर ऐसे भी आपने देखे होंगे जो अपने से दुखी हैं, अपने संस्कारों से दुखी हैं, रो रो कर कहते हैं कि हम क्या करें, कितनी बार मैंने संकल्प किया फिर भी ये संस्कार मेरा पीछा छोड़ता नहीं है, मैं क्या करूं। आप विश्वास करेंगे, एक माता मुझे मिली, वो अपने संस्कार की कंप्लेन में आंसू भी बहा रही हो, तो मैंने कहा आप दादियों को मिली? कहती है ये पूछो किसको नहीं मिली, दादियों को भी मिली, बड़े भाइयों को भी मिली, सबको, पर मेरा ये संस्कार नहीं खत्म होता, कुछ दिन जाएगा फिर उभरा। और अब नौबत ये आ गई है, मुझे सुसाइडल थॉट चलते हैं कि इससे तो मैं मर जाऊं। अब आप सोचिए अपने से इतना दुखी हो गए कि मरने तक के भी संकल्प चल रहे हैं। मैंने कहा मरना तो सॉल्यूशन नहीं है, एक और महापाप जुड़ जाएगा, महा महा महापाप। आप घात बाबा कहते महा महापाप, तो सुसाइड करना तो कितना बड़ा पाप है। जिन परिस्थितियों से तंग होके आप सुसाइड करने लगे तो आपका कार्मिक अकाउंट तो खत्म नहीं हुआ, वो तो साथ जाएगा, पिछला बचा हुआ भी जाएगा, एक और जुड़ के जाएगा, और अभी जितना दुखी हो उससे अधिक दुखी तड़फती रहेगी आत्मा, भटकती रहेगी, और जहां भी जाएंगे। कई बार परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ऐसा करता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे क्या, आगे उससे अधिक तड़फन, कई गुणा अधिक, तो वो स्टेप तो ठीक नहीं है ना। हिम्मत करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अंतिम दम तक पुरुषार्थ करो। हमने उस माता से पूछा, उसको तीव्र पुरुषार्थी बनने की भावना थी, वो मुरली कभी मिस नहीं करती, सेवा भी खूब करती है, धन से भी, ज्ञान सुनाने की भी, धारणाएं भी सारी नंबर वन है, केवल उसका एक कड़ा संस्कार था कि अमृत वेला नहीं उठ पाती, और जब जब बाबा कहता उसको बहुत दिल कष्ट होती, उसके लिए कई बार संकल्प किया लेकिन वो उस कड़े संस्कार को भस्म नहीं कर पाती। तो इसलिए जो है उसको बहुत सुसाइडल थॉट तक चलते थे। तो हमने कहा ऐसा तो कभी नहीं करना, आप अगर 9 सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में किसी कारणवश आपका कोई पता नहीं कोई कार्मिक अकाउंट या कोई पुराना, आप अगर कमजोर हैं, मार्क्स बहुत कम हैं, तो कम से कम 9 में तो अच्छी हो, पॉजिटिव देखो ना। और बाबा कहते विशेषता को यूज करोगे तो 10वां भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा है 7वां को कईयों से मिल चुकी, कई बार राखी पे प्रतिज्ञा कर चुकी, इसकी पूरी मदद करें। तो मैंने उसे कहा कि तुम ऐसे कर सकती हो कि भाई, कहती है अलार्म अलूरम भरती हूं वो तो निकट रखूं तो इतना उस वक्त आलस्वार होता है, बंद करके सो जाती हूं, फिर हाँ उठ जाऊं, कोई मेरे साथ मधुबन में साथी होता है, जब उठ जाती हूं अच्छे तो फिर मेरा योग सही लगता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, किसी के ऐसी माता जिसका बहुत अच्छा अमृत वेला हो उसके पास जाके रहो, के पति ज्ञान में नहीं चलता है वो बिल्कुल छुट्टी नहीं देगा। मैं कह आश्रम पे रहो 15 दिन, दीदियां साथ कराएंगी, और मनोविज्ञान ये कहता है 21 दिन कोई एक आदत आपने अच्छी बना ली फिर वो आपका पॉजिटिव संस्कार बन जाएगा, बिल्कुल छुट्टी नहीं देगा। मैं किसी को अपने पास रख लो, कोई ऐसी तपस्वी आत्मा जिसका के वो भी नहीं मिलने वाली छुट्टी। फिर एक युक्ति सूझी, उसको वो युक्ति बताई। हमने कहा किसी से अच्छी जो आपकी मित्र बहन हो ना सखी, उसको जिसका अमृत वेला बड़ा पावरफुल, रात को दोनों निश्चित करके सो के कल क्या अनुभव करना है हमने, और सुबह जो है वो रिंग करे और फिर करे अच्छा हम इस संकल्प में अब बैठते हैं, 4 बजने में 5 मिनट पे करे, आप पास मोबाइल रखो, नहीं उठो फिर करे, फिर दोनों करो, फिर उसके बाद शेयर करो कि कैसा अनुभव। उसने कहा ये संभव हो सकता है। सचमुच उसने वो अप्लाई किया और सचमुच उसने विजय प्राप्त कर ली आखिर। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, संगम पे तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप विजय ना प्राप्त करें। हर चीज में कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मेहनत और सतत प्रयास चाहिए। ठीक है, मैं आज आपको कड़े संस्कारों को भस्म करने के, उसको तो मैंने एक बताया था पॉइंट, मैं आपको 10 पॉइंट बताता हूं, 10 टिप्स। अगर उसमें से एक को भी आप अच्छी तरह अप्लाई करेंगे तो आपका कड़ा संस्कार भस्म हो जाएगा। और हमेशा गुलजार दादी कहती थी किसी के पीछे एक, किसी के पीछे दो, कोई ना कोई संस्कार पीछे लगे जरूर हुए। अच्छा चलो सच्चाई से आप में से जो कोई, ये कईयों के तो छोटे मोटे हैं, कोई समझते हैं कि मैं भी अपने एक संस्कार से बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। प्यारे बाबा कुछ ऐसी शक्ति दो नष्ट हो जाए, वो संस्कार जाता ही नहीं है। ऐसे जो समझते हैं जरा हाथ खड़ा करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। देखो कितनी सभा, लगभग सारी सभा। हाँ तो आप सोचिए, खैर सच बोला आपने, बहुत अच्छी बात, आपके लिए भी तालियां बजाते हैं, सच तो बोला। तो भस्म, ऐसा नहीं कि भस्म नहीं हो सकते हैं, भस्म हो सकते हैं लेकिन वो लगन चाहिए, वो तल्लीनता चाहिए, पूरा पुरुषार्थ चाहिए। तो मैं आज आपको 10 टिप्स बताता हूं, आप इनको यूज करेंगे तो आप 100% सक्सेस मिलेगी। सबसे पहला है, कड़े संस्कार को अगर भस्म करना चाहते हैं तो उसका तरीका है कड़ी तपस्या। अच्छा ये सब आए हुए हैं ना इंदौर और वहां से छत्तीसगढ़ से आए हैं ना, आप में से कोई भिलाई से भी है जरा हाथ खड़ा करो। हैं कुछ माताएं हैं पीछे। अच्छा भिलाई में क्या चीज है, भिलाई स्टील प्लांट है। हम भिलाई गए 2-3 बार तो हमें एक बार वो स्टील प्लांट भी दिखाया। तो स्टील प्लांट में क्या है, हाई फर्नेस, हाई टेम्परेचर फर्नेस भट्टी में, तो वो कैसे कच्चा लोहा डाला जाता और वो उसको बिल्कुल पिघला देता, फिर सांचों में वो कैसे वो रेलवे लाइन बन बन के निकलती हैं और ऐसी मजबूत निकलती हैं बन के, फिर उन पे हजारों टनों की गाड़ियां अगर चली जाएं तो वो चेंज नहीं होती, इतना ज्यादा परिवर्तन समझो। तो क्या शिक्षा मिली, कड़े संस्कार के लिए कड़ी तपस्या। अगर सचमुच एक अच्छी योग तपस्या करें, योग अग्नि प्रज्वलित कर लें, तो जब योग अग्नि जैसे वो इतने कड़े लोहे को भी पिघाल के उसका रूप परिवर्तन कर दिया, तो ये सब चीजें कहां से निकली हैं, हमारे से ही तो निकली हैं। अगर हम भी योग, तेज योग अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अगर उस संस्कार को रख दिया तो बिल्कुल पिघल जाएगा, चेंज हो जाएगा और उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम तपस्या नहीं करते, कहीं भाई बहन 10 साल से 15 साल से 20 साल से अपनी कंप्लेन तो करते रहते हैं। क्या कंप्लेन करते, क्या करूं मेरा ये संस्कार नहीं जाता, क्या करूं मेरा ये संस्कार नहीं जाता, लेकिन वो कभी भी मेहनत नहीं करते, उसके लिए तपस्या नहीं करते कि हाँ अच्छा चलो मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करूं 21 दिन एक ही समय एक ही स्थान पे 1 घंटा पावरफुल योग तपस्या करनी है और उस संस्कार के निमित्त करनी है। देखो भस्म होता है कि नहीं होता है। अच्छा किसी ने ऐसा प्रयोग किया है जरा, 21 दिन का जिसने प्रयोग किया हो हाथ खड़ा करो, किया है ना, और सफलता मिली है, मिली है तो हाथ खड़ा करो, देखो मिली है। ये हो नहीं सकता ना मिले, या तो आपका योग ढीला ढाला, फिर तो नहीं मिलेगी। अगर योग शक्तिशाली है, जैसे हाई टेम्परेचर फर्नेस होती है, तो फिर वो नहीं ठहर पाएगा। तो प्रयोग करके देखो। तो आज इतने सब जो खड़े हुए, जिन्होंने कहा कि हाँ हम भी इससे थोड़ा परेशान है अपने किसी संस्कार से, तो आज एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाओ। क्या कल से ही कोई टाइम निश्चित करो, 21 दिन, एक घंटा, एक ही समय पे हमने तपस्या करनी है। कोई ऐसा टाइम निश्चित करो जिस वक्त आप शक्तिशाली योग कर पाओ। ठीक है, करेंगे करेंगे, कल से प्रयोग चालू। जो कहते करेंगे हाथ खड़ा करो। हाँ, आप करना, आप रिजल्ट देखना। अगर आपने अच्छी इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक घंटे में आप बार बार यही सोचते रहें कि वो मेरा संस्कार, उसके लिए मैं तपस्या, वो मैंने मैंने गुलजार दादी से पूछा था एक बार, जब कभी हम ऐसा करें, उन्होंने कहा शुरू में केवल कुछ सेकंड के लिए एक बार बाबा को बता दो कि बाबा इसके निमित्त में, फिर उस एक घंटे की तपस्या में उस संस्कार का भी संकल्प ना आए। बस तपस्या योग अग्नि वाली, वो तपस्या करनी, फिर रिजल्ट निकलेगी और फिर अवश्य आप देखना आपको बहुत शक्ति भी मिलेगी, विजयी बनेंगे। नंबर टू, हर संस्कार को भस्म करने के लिए ना बाबा ने साकार में भी और अव्यक्त मुरलियों में भी अच्छे अच्छे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए, लेकिन वो समय पे स्मृति कईयों को कलेक्ट करने नहीं आते, और कलेक्ट करके फिर समय पे यूज करने नहीं आते, समय पे स्मृति नहीं आती। समझो कभी किसी का टकराव का संस्कार है। अब बाबा के कितना सुंदर महावाक्य है कि कोई काला कोयला भी हो, डायमंड बन के सदा डायमंड को देखना है। तो आप सोचिए कितना अच्छा ये, कोई काला कोयला भी हो तो भी डायमंड बन डायमंड को देखना है। तो संस्कार परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, अपना आप होगा ना। एक एक महावाक्य ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो सचमुच जो है एकदम उस संस्कार को तो भस्म कर दे। जैसे हमारे शास्त्रों में दिखाया, इधर से चलता था तीर और एकदम भस्म कर देता था। तो हमें वो सिलेक्ट करने चाहिए, ढूंढने चाहिए ऐसे चुने हुए। और बाबा की मुरली सुनते हैं ना रोज, और कुछ ना कर सको, जिस कड़े संस्कार से आप दुखी हैं, आप उसके लिए स्पेशल एक डायरी बना लो, रोज उसके प्रति क्या पॉइंट आई है वो कलेक्ट करते जाओ। आप देखो कितना बड़ा खजाना, कितने सारे अस्त्र शस्त्र आपके पास जमा हो जाएंगे। फिर उनमें टॉप सिलेक्ट करके उनको स्मरण में रखो। समझो किसी को अपवित्रता के ही संकल्प चलते हैं, तो बाबा क्या क्या शब्द कहते हैं, कभी मुरली में कहेंगे, अभी कुछ दिन पहले आया था ना, अरे बच्चे ऐसा संकल्प आना, पांच मंजिल से गिरना, हड़गुट टूट जाना, अरे बच्चे ये तो विष पीना और पिलाना, अरे बच्चे काम कटारी, बाबा कितना गटर में घुसने की तैयारी। तो बाबा बड़े से बड़ी हिंसा क्या क्या शब्द देते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा की हम बातों को बुद्धि में, वो उसके लिए खास ऐसे ऐसे पॉइंट कुछ नोट करके अपने पास रखें, और फिर टाइम पे उनको रिवाइज करें, स्मृति रखें। खासकर जब भी कभी उस विकार का आपके ऊपर वो पड़े, हाँ अटैक हो, तब उस टाइम उन अस्त्र शस्त्रों को यूज करें, तो आप अवश्य विजयी बनेंगे। हो नहीं सकता कि विजयी ना बने। इसलिए दूसरा ये है कि अव्यक्त महावाक्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बड़ी सुंदर, कल परसों भी मेरे को एक किताब करुणा भाई जी ने दी, क्या नाम था उसका, दिव्य रोशनी। उसमें किसी भाई ने पुरुषार्थ किया है 69 से 2017 तक के महावाक्यों में से कुछ मुख्य मुख्य निकाल के उस किताब में, केवल वो बाबा के डायरेक्ट महावाक्य हैं। तो मैंने उसको रख लिया कि रोज रात को सोते टाइम एक पेज पढ़ के सोएंगे। हाँ, ऐसे हमने भी एक बार, आप सब सुनते होंगे अव्यक्त मुरली जो यूट्यूब पे सुनाते हैं, तो वो 69 से 2017 तक की मुरलियों में हर वर्ष की मुरली के बाद मक्खन, 21 पॉइंट का मक्खन, मान लो 400-500 पॉइंट में से 21 खास निकालते थे, और वो ऐसी होती थी एक एक पूरा ब्रह्मास्त्र की तरह। लेकिन मैं अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, आतम भाई जी से बात की है, उसकी एक बुक बना दे, में वो पूरा मक्खन हर वर्ष का हमारे पास निकला हुआ पड़ा है, और वो एक पॉइंट भी इतना ऊंचा ले जाती है एकदम, वो प्रैक्टिकल ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि 400 में से सिलेक्ट किए हैं खास 15-20 पॉइंट। तो इसलिए आप, अगर हुआ वो प्रकाशन हुई, लेकिन वैसे भी आप मुरलियों की स्टडी से, अव्यक्त मुरली स्टडी करें, निकाल सकते हैं ऐसे, तो ये आपके बहुत लाभ देगा। तीसरा पॉइंट है फिर, वो है बड़ों से, वरिष्ठ जनों से शेयर करें। शेयर करने से भी तो क्या होता है, उससे आपको गाइडेंस मिलती है, उनकी सकाश मिलती है, और उसका उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। मुझे याद है एक बार एक बुरहानपुर की बहन थी कोई, उसने मुझे एक भाई के बारे बताया, वहां भट्टी कराने गए थे, कि भाई मुख्य भाई है और दादियों के भी बहुत निकट है, परंतु इसका पहले ही अज्ञान का एक संस्कार है, क्या हर बात में तर्क करना, बहुत वो करना, तो अब भी वो संस्कार उसका काम करता है। तो दादी ने बहन को कहा, वहां सुधा बहन उनका नाम था, अभी तो शायद अव्यक्त हो गई हूं, तो दादी ने कहा कि जो कलकत्ता में मेला लगा है ना सुधा, बुरहानपुर में भी लगाओ। कह ठीक है, जाके उसने उस भाई से बात की, उसने कहा कमाल है, तर्क तो हमेशा, कलकत्ता कहां और ये छोटा सा शहर बुरहानपुर कहां, इतना बड़ा मेला यहां कैसे लग सकता है। कभी दादी ने कहा पर वो माने ही नहीं, और मुख्य न माने तो उसी नहीं तो उसी पे ही तो सारा कुछ डिपेंड है, उसी ने सबको उत्साह दिलाना है। जब दो तीन बार बात की, बिल्कुल भी नहीं, उसका मधुबन से बहुत प्यार था, कोई कारण बहाना बना के मधुबन चलते हैं ये काम, कहते ठीक, दोनों मधुबन आए। रास्ते में वो समझ गया कि दादी के सामने पेश करेगी मुझे तो उसने क्या किया, 15 पॉइंट निकाले कि मेला क्यों नहीं करना चाहिए यहां पे बुरहानपुर में, कि कहेगी तो मैं 15 तर्क दूंगा। तो खैर, यहां पहुंच के एक दो दिन के बाद के दादी से मिलने चले, कि चल चले, तो मिले, मिलते ही बैठे, दादी ने दृष्टि देते, सुधा फिर उस मेले का क्या हुआ पहले ये बात की, उनका दादी शर्मा जी का विचार कुछ और है, बस इतना ही कहा तो दादी एकदम साइलेंस में चली गई, और ऐसी पावरफुल दृष्टि शर्मा जी को दी, लगातार गहन दृष्टि, फिर कहा शर्मा जी सारी दुनिया में ढूंढने पे तुम्हें ऐसी बहन सुधा जैसी नहीं मिल सकती। फिर सुधा बहन को कहा सारी दुनिया में ढूंढने से तेरे को ऐसा भाई नहीं मिल सकता और कुछ नहीं कहा, मैंने कहा और कुछ नहीं कहते, और कुछ नहीं कहा, बस टोली दी आ गए। मेला करो या न करो कुछ नहीं, केवल साइलेंस की दृष्टि। फिर मैंने पूछा मेला किया, कहते वो भाई ने भी सुनाया मुझे, कहते मेला किया उसके बाद तो मैं जाके सब सेंटरों पे देखे, उमंग उत्साह भर के मैंने 15 कारण निकाले कि क्यों मेला करना जरूरी है, और फिर सारा मेला वहां किया और सफलता मिली। परंतु कहते उस दिन से दादी की जो दृष्टि मिली ऐसी पावरफुल, मेरा वो तर्क करने का संस्कार जो है ना वो सदा के लिए भस्म हो गया। तो बड़ों के सामने जब शेयर करते हैं ना तो सकाश भी मिलती है, पावरफुल सकाश मिलती है, फिर वो सकाश काम करती है। मुझे याद है कि लगभग 30 साल पहले की बात है, 25-30 साल हो गए होंगे, भट्टी वरिष्ठ भाइयों में कुछ एक को बुलाते तो दादियां ही क्लास लेती थी। दादी जानकी क्लास लिया, गुलजार दादी लिया, ये बड़ी दादियां ही क्लास लेती थी। तो बाद में दादी जानकी को मिला तो सच्चा सच्चा चार्ट सुनाने की सदा आदत है, तो मैं कहा दादी बाकी तो सब ठीक है पर एक छोटा सा संस्कार है वो कभी कभी। तो दादी सेम उसी तरह 3-4 मिनट साइलेंस में चली गई और दृष्टि देती रही। फिर उसके बाद का ये भी खत्म हो जाएगा, और वो दिन आज 30 साल हो गए, फिर वो खत्म ही हो गया। तो कभी भी लज्जा नहीं करो बड़ों से, छिपाओ नहीं, जिसे बाबा कहते सर्जन से छिपाओ नहीं। ऐसी आत्माएं जो पावरफुल हैं उनसे कैसे भी, बिजी तो बहुत हैं परंतु वो दयालु भी बहुत हैं। अगर आप एक बार दो बार तीन बार रिक्वेस्ट करेंगे वो जरूर टाइम देंगे, और टाइम देंगे आप सुनाएंगे, फिर उनकी दृष्टि लेंगे, फिर आप उनके कुछ सुंदर विचार सुनेंगे, उनका सकाश मिलेगा और उससे भी आपका संस्कार काफी ढीला पड़ जाएगा, भस्म में भी हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट है अखंड दानी, अखंड दानी महादानी। तो बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे जो भी चीज तुम्हें दुखी करती है ना समझो, तो तुम बच्चे उसी का दान शुरू कर दो। दो चीजें बाबा कहते हैं, एक तो बच्चे मनसा सेवा जब लगातार करेंगे तुम्हारी छोटी छोटी कमियां और ये संस्कार वंस्कार सब भस्म हो जाएंगे, अखंड लंगर चला दो। और दूसरा कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे विद्या की कमी होती है तो दुनिया विद्या दान कराती है, हेल्थ की कमी है तो हेल्थ में दान कराती है कि चलो हॉस्पिटल खोलो ये करो। पर यहां पर तुम बच्चे जिस संस्कार से दुखी हो ना उसी का समझो, किसी का क्रोध का ही संस्कार है। आप यही सोच लो कि मैंने जिंदगी में कम से कम ज्यादा नहीं तो 15-20 आत्माएं ऐसी तैयार करनी है जो संपूर्ण क्रोध मुक्त हो। और आप उन्हें बड़े अच्छे अच्छे टिप्स निकालेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, आप किसी पे मेहनत करेंगे तो आपका भी, जिसे बाबा ने कहा था कि बच्चे अगर आपका 14 आने उमंग उत्साह है और किसी दूसरे के अंदर आप 16 आने उमंग उत्साह भरते हैं तो उसका भी 14, आपका 14 भी 16 हो जाएगा, अपना आप बढ़ जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, वो दान करें, उसी चीज का दान करें। जो भी आसुरी संस्कार है उसके विपरीत जो गुण है, घृणा है तो उसके विपरीत प्रेम है, ठीक है ना, जो भी है उसको हम कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा उसका दान करें तो उससे भी हमारा बिल्कुल जो है वो परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे अखंड महादानी बने। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है अटेंशन एंड चेकिंग, मतलब कि किसी भी संस्कार को आप परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि आप चेकिंग चार्ट ना रखें उसका, प्रतिदिन आप उसका चार्ट रखें, टारगेट रखें, महीने बाद देखें कितना विजय हुई, 25 दिन हुई, 27 दिन हुई, फिर आपका हौसला बढ़ता जाएगा, उसे बढ़ाते जाएं। तो ये एक जीवन में अगर दिव्य गुण अपना लिया। एक वीआईपी भाई था, उसको मतलब कॉन्टेक्ट सोल थी, संपर्क वाला, तो उसने क्या किया, वो संपर्क वाली आत्मा तो उससे आया राखी बंधाने, तो बहन जी ने कहा संकल्प करो। कोई कह संकल्प करूं, क्या संकल्प कर सकता हूं, तो उनका कोई कमी हो उसका संकल्प करो। तो उसने कहा जी मैं प्रयास करने का संकल्प कर सकता हूं। कि करो, कि मेरा एक कड़ा संस्कार है, मेरा मोटर वर्कशॉप है, लेबर बहुत है और लेबर परेशान भी करती है, तो मैं गाली बहुत देता हूं और मैं आज ये संकल्प करता हूं कि मैं गाली अब कभी नहीं दूंगा, ये इसके लिए प्रयास करूंगा। फिर साथ में कहा थोड़ा सा इसमें आपकी मदद चाहिए। कि क्या, मैं डेली रात को आपको रिपोर्ट दूंगा कि मैं आज जो है कितना सफल हुआ इस संस्कार, तो अटेंशन और चेकिंग होगी ना कि दीदी को रात को मुझे बताना है। तो उसने संकल्प किया, राखी बंधा के भी गया, तो नेक्स्ट डे रोकते रोकते भी 22 गालियां निकली दिन में। तो रात को बताया बड़े शर्म से कि वैसे तो सैकड़ों निकलती थी परंतु आज काफी ब्रेक लगाया फिर भी 22 तो निकली है। फिर अगले दिन और मेहनत की, फिर और कम हो गई, मतलब 15 के लगभग निकली। फिर अगले दिन और मेहनत की और कम हो गई, 10-12 हो गई। फिर और मेहनत की, फिर लास्ट में 10-12 दिन के बाद केवल 3-4 हुई। एक दिन, फिर एक दिन बिल्कुल फिनिश, एक भी नहीं हुई। फिर उसके बाद 3-4 दिन बिल्कुल, फिर तो गुड संस्कार बन गया। तो उसकी युगल और उसकी मां भी बहुत परेशान थे, क्योंकि संस्कार जो होता है ना हर एक को परेशान करता है। वो घर में भी जाके आदत बन गई थी ना, उन्हें भी गालियां देता था, तो वो तो पूछो नहीं रास करें, अरे वाह ब्रह्म कुमारियों में गया, कम से कम इसका संस्कार तो खत्म हुआ। अब आप देखेंगे परिवर्तन कहां से आया, अटेंशन एंड चेकिंग। रोज अटेंशन रखा, चेकिंग किया, चार्ट, और फिर बता के आता था घर। तो आप सब भी रोज क्लास करते हैं, सेंटर पे जाते हैं, आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप सहज विजयी बन जाएंगे। आप रोज जाके कल कैसा रहा उस संस्कार के बारे में, आप दीदी के पास टाइम ना हो तो भी एक स्लिप बना के दे देना। अगर वो आपकी डायरेक्ट स्लिप भी ना ले सके, छोटी बहन के द्वारा बन ये कल का मेरा चार्ट, आप करके देखो एक महीना, या तो आप चार्ट देना बंद कर देंगे या संस्कार भस्म हो जाएगा, एक काम जरूर होगा। तो इसलिए ये है अटेंशन एंड चेकिंग, इससे बहुत फायदा होता है। इसको आप खूब अप्लाई करेंगे, सचमुच आप विजयी बनेंगे। अच्छा, कौन कौन है जो वैसे चार्ट लिखते हैं, रात को बाबा कहते हैं ना चार्ट लिख के सो, कौन कौन है? अच्छा, बस 2-3 आत्माएं, बहुत थोड़े हैं। तो ये एक हैबिट बनाओ, बहुत ही अच्छा, बाबा की आज्ञा भी है, उससे जीवन परिवर्तन में बहुत मदद मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी। हम पिछले 30 साल में एक दिन भी चार्ट लिखना मिस नहीं किया। हमें हॉबी है, जैसे कईयों को हॉबी होती है ना, रात को हम 12 बजे भी सो के आए तो भी हम कुछ भी हो जाए वो लिखे बिना नहीं सोएंगे। तो ये अपने अंदर वो अगर आपने हैबिट बना ली तो आपको बड़ा आनंद आएगा, फिर इसके द्वारा प्रोग्रेस इतनी होगी जो बहुत अधिक। नेक्स्ट है कि कितने पॉइंट सुनाए आपको, पांच पॉइंट सुनाए ना, अटेंशन एंड चेकिंग। फिर छठा है भगवान से प्रतिज्ञा। बाबा अक्सर अव्यक्त मुरली में कहते हैं ना, बच्चे संकल्प तो करते हैं लेकिन संकल्प करके फिर क्या है, फिर भूल ही जाते हैं मैंने कोई संकल्प किया भी था। तो संकल्प याद रहना चाहिए, भले रोज सुन लेते हैं आज की मुरली से दृढ़ संकल्प, लेकिन वो क्या संकल्प है वो भूल जाते हैं। तो संकल्प तो सदैव याद रहने चाहिए ना, संकल्प कभी भी भूलने नहीं चाहिए, तभी तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे ना। तो दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसे बाबा कहते हैं कि बच्चे धरत परिये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए लेकिन बच्चे अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है, ये एक आदत बना ले, छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं भी करना सीखें और करके फिर चाहे जान चली जाए अब इसको निभाना है, मैंने कर लिया है तो इसको करना जरूर है पूरा, फिर आपको सफलता बहुत मिलेगी, प्रयास करके देखें, ठीक है ना। तो मेरी भगवान से प्रतिज्ञा, जो आपने संस्कार के लिए प्रयोग कर रहे हो रोज अमृत वेले रिवाइज करो, इवन रिटर्न में मेरी भगवान से अटल प्रतिज्ञा, फिर वो प्रतिज्ञा लिखो, कुछ भी हो जाए कैसी भी मैंने ऐसा करना ही है जो आपने संकल्प किया। फिर बाबा ने कहा बच्चे वो क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हो लेकिन एक तो अमृत वेले उसको रिवाइज करो, रोजाना रिवाइज करो, फिर क्या करो, फिर दिन भर में बाबा ने कहा उसको जल दो स्मृति का, पुनः पुनः उसको स्मृति में रखो, फिर आपको सफलता पूरी मिलेगी। तो प्रतिज्ञा जो है ना, प्रतिज्ञा तो बहुत अच्छा रहता है, एक प्रतिज्ञाओं की अलग से डायरी बना लेनी चाहिए, आज की प्रतिज्ञा, फिर रात को रिजल्ट लिखो आज की प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा ऐसी करनी सीखो, भीषम प्रतिज्ञा जिसे कहते हैं, हाँ मतलब प्राण छूट जाए लेकिन हम कुछ भी हो जाए हम उस पे पूरे अटल रहेंगे, ऐसे जीवन में कुछ एक प्रतिज्ञाएं कहीं होते हैं ना, कहीं करते हैं प्रतिज्ञा बड़ी पक्की करते हैं, दुनिया की कोई ताकत आ जाए उसे चेंज नहीं कर सकते। कल मेरे को एक भाई मिला, वो कह रहा था मुझे 11 वर्ष 11 महीने हो गए तो मैंने टोली नहीं खाई है। मैंने कहा अच्छा क्यों, बाय द वे उसको हर्ट का कुछ हुआ था तो उसे उनको समझ में आ गई अगर जीवन जीना, उसने दृढ़ संकल्प किया। अब सारे नहीं कर पाते ना, आप देखना हर्ट का भी होगा, डॉक्टर ये भी कहेंगे तुम मर जाएगा तो भी नहीं छोड़ते, डॉक्टर मर तो जाऊंगा लेकिन खाते पीते मरू ना तो अच्छा है। हाँ अभी एक बहन में नाम नहीं लेता, कोई आई हुई है उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है और डायलिसिस पे है, यंग है जबकि वो, तो उसको डॉक्टर कहते हैं भाई ये नहीं खाओ ये नहीं खाओ ये नहीं खाओ, फला मीठा नहीं खाओ, तेरे को पहले वो। तो मैं भी समझाता हूं उसको जाके, बहन जीवन तो पता है क्या कहती है, भाई साहब मरना तो है ही ना, खाते पीते मरने दो ना। आप बताइए अंदर कशिश, कितनों ने जान गवाई है, मुझे बीकेज भी पता है, वो छोड़ नहीं पाए चीजों को, जो चीज मना किए डॉक्टर ने छोड़ दो, छोड़ते नहीं, मीठा नहीं छोड़ेंगे कैसे भी करके वो, और जान गवा देंगे, परंतु अज्ञानियों में तो भरे पड़े हैं, वहां तो बहुत हैं लोग। एक व्यक्ति था वीआईपी, उसकी युगल कभी कभी आती थी पर वो चैन स्मोकर था, उससे उसका किडनी गया, कहीं चीज गए, कहीं घर में पड़ा हुआ था बेड पे, उसके युगल ने बुलाया, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह समझाया, बड़े प्यार से समझाया, देखो आप ये छोड़ोगे तो आपको बहुत सुंदर जीवन मिलेगा, ज्ञान लोगे योग सीखोगे और कितना अच्छा आप सचमुच आप सतयुगी दुनिया में जा पाएंगे, उस स्वर्गिक दुनिया में जा पाएंगे। वो मुझे पता क्या कहता है, आधा घंटा सुनाया, वो पता क्या कहता है, कहता है भारत भूषण जी केवल एक बात बता दीजिए। मैं कह क्या, मैं सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तैयार हूं, स्वर्गिक दुनिया में जाने के लिए तैयार हूं, पर मुझे ये बताइए वहां सिगरेट मिलेगी या नहीं। मैंने कहा मर जाओगे, क्या कोई बात नहीं मर जाएंगे, अपना खा पीते पीते ही मैं तो मरूंगा जी। मैं उसको देखो जीवन से भी नहीं है और शरीर छोड़ गया फिर कुछ टाइम बाद, ये हालत है। इतना ज्यादा अटैच होते हैं, इतने ज्यादा बंधन में होते हैं उसके, इसलिए हम उसको भगवान से दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो फिर उसको रिवाइज करें बार बार, तो फिर हम सचमुच जो है मुझे प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो मेरा कोई कड़ा संस्कार है उसके दुष्परिणामों पर थोड़ा सा चिंतन करें, कितना भारी नुकसान है। कभी कभी बाबा शब्द दे देते हैं कि बच्चे महा 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 पाप है, एक्चुअली हम उनको रियलाइज नहीं करते। रोज क्यों बाबा कहते हैं रावण तुम्हारा दुश्मन है, ये माया ने तुम्हें देखो बच्चे बर्बाद कर दिया, अरे तुमको तो मैंने सरताज बनाया था, इसने तुम्हें गिराते गिराते कितना तुम्हें कंगाल मोहताज कर दिया। रावण दुश्मन हर वक्त तुम्हें गिराने पे, क्यों बाबा ये कहते हैं, क्योंकि हमें नफरत आ जाए, इन विकारों ने हमारा बेड़ा गर्क किया, हमारी राजाई लूटी, हमारे सब सोने के महल लूटे, ये है वो विकार, वो हमें दुश्मन लगने लग जाए, उनका संकल्प आते हमें घृणा आए कि यही है वो दुश्मन जिसने इतने वर्षों से मुझे गिराते गिराते का, अब मैं इनकी चाल में नहीं फंसने वाली, नहीं फंसने वाला, तो ये बुद्धि में आना चाहिए। तो वो जो है ना उसमें हम उससे, जिसे बाबा क्यों कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति, दिल से उनसे नफरत नहीं आई। कभी कभी बाबा कहते हैं कि माया मुझे कहती है बाबा अब मैं भी थक चुकी हूं, जाना चाहती हूं, जाती भी हूं, पर क्या करूं आपके बच्चे फिर बुला लेते। अब आप बताइए, कभी कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे मेहमान निवाजी करते हैं, उसको बिला के चाय पिला पानी पिलाते हैं तो क्यों नहीं आएगी। बाबा ने कहा आप आवाहन करते हो तब माया आती, नहीं तो माया नहीं आएगी। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए उन संस्कारों का चिंतन करके कि कितनी गंदगी है, ये किस तरह मेरे दुश्मन हैं, मुझे गिराने वाले, उल्टे लटकाने वाले, तो उसके प्रति अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जम गया कि सचमुच ये दुश्मन है, मैंने इनसे किनारा करना है, फिर आप विजयी रतन बन जाएंगे, फिर सचमुच जो है आपको सफलता मिलेगी, उससे नफरत हो जाए, फिर रियलाइज करो कि कितना गलत है। समझो किसी का क्रोध करना, टोंट मारना एक संस्कार है, पर दूसरा कितना तड़पता है, कितने दिन तड़पता है, कोई तो किसी की बात पांच पांच साल तक नहीं भूल पाता, उसने मुझे ऐसा बोला था, इतना कटु बोला, तो सोचो हम कितने बड़े पाप के निमित्त बन गए। पहले तो ऐसा कभी हो ना हो तो सॉरी करें, क्योंकि ये सारे विकार जो है ना ये दुख देने के निमित्त है, दूसरी आत्माओं को खुद को भी दुखी बनाते हैं, दूसरों को भी तड़फाते हैं, उसको हमें समझना है और उसको रियलाइज करना है कि रियली ये बहुत महापाप का काम। तभी बाबा कहते हैं ऐसे ना समझा करो, चलो इतना तो चलता ही है ब्राह्मण परिवार में, क्या हुआ इतना तो चलता। बाबा ने कहा जो ऐसे कहते हैं ना चलता है, बाबा ने कहा वो चिल्लाएंगे, बाप को चलाते हो ना तो चिल्लाएंगे, इतना तो होता ही है। बाबा ने कहा अलबेलापन है, ये अलबेलापन नहीं चलेगा। इसलिए बड़ा ध्यान हो, थोड़ा सा भी अगर आप अपने को उनको अलाउ करेंगे, एंट्री गेट खोल दिया। क्यों बाबा ने अब की मुरली में भी कहा, सेकंड भी तुम वेस्ट करते हो तो बच्चे कई वर्ष गवा दिए, इतना तुम्हें समय का वैल्यू होनी चाहिए। इस संगम का समय कितना अनमोल है, सेकंड भी वेस्ट किया तो बच्चे तुमने, और पाप कर दिया, सारा दिन अच्छा योग लगाया, तपस्या किया, सेवा किया, पर कोई पाप कर दिया तो 100 गुना दंड आपका सारा गया। इसलिए वो गीत बिल्कुल ठीक बना हुआ है, गीत है ना, क्या भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल न बन सको तो कांटे बनकर मत रहना। मतलब आप पुण्य कर्मों को अगर खूब जमा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि पाप जरा ना हो, क्योंकि पाप का फिर 100 गुना दंड, उस पे पूरा टेंशन रखो। क्यों बाबा कहते कि बच्चे दरबार लगाओ इन 5 इन कर्मेंद्रियों की भी, इन विकारों की, सब अपने मन बुद्धि संस्कार, किसी ने धोखा तो नहीं दिया इसीलिए, और फिर फटकार लगाओ उसको, फटकार लगाओ क्यों धोखा दिया, क्योंकि अगर हम यहां पर इस पर राज प्राप्त करेंगे तभी भविष्य में वेश्य महाराजा वेश्य महारानी बनेंगे। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना है, उसके लिए खूब अभ्यास करना है। फिर नेक्स्ट है विदेही स्थिति। एक गीत है ना, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, विदेही बन जाऊं। सारे पापों का बीज जो है वो है देह अभिमान। बाबा कहते हैं देह अभिमान ही सबसे कड़ी बीमारी है, और विदेही स्थिति में बीज भस्म हो जाता है। तो हमें विदेही स्थिति का खूब अच्छी तरह से अभ्यास करना है। विदेही स्थिति, बार बार आत्मिक स्थिति। कल भी 5-6 का ग्रुप आया मेरे पास, कहने लगे भाई साहब हमें शरीर ही कैसे बने, क्योंकि बेस है ना, योग लगाना चाहते हैं उसका भी बेस है, ज्ञान स्मृति में रहे उसका भी बेस है। तब बाबा हमेशा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, पहले आत्मा समझो। तो विदेही स्थिति माना जैसे सितारों की दुनिया में रह रहे हैं, जैसे सब सितारे ही नजर आ रहे हैं और खुद भी आप सितारा बने हुए हैं, इसका कैसे अभ्यास करें, इसके लिए बार बार अपने से 3-4 क्वेश्चन पूछते रहे, क्योंकि दिन भर तो कर्म करते ही है ना। तो पूछें, जब भी बोल रहे हो, बोलने का कर्म है ना, कौन बोल रहा है कि मैं आत्मा इस मुख रूपी कर्मेंद्रियों से बोल रही हूं, कौन देख रहा है, मैं आत्मा इन नैनो रूपी खिड़कियों से देख रही हूं। फिर अभ्यास करो, प्रैक्टिकल में खिड़कियां अलग, मैं आत्मा अलग, दिन में ऐसे कई बार आत्मक स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। ये जो 1-1 घंटे बाद ड्रिल बजती है उसमें से शरीरी स्थिति का अभ्यास जरूर करें। जब भी बाबा से दृष्टि लेते हैं तब है शरीरी स्थिति का, कैसे मैं आत्मा इनके द्वारा ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजा रही हूं, और सब बिंदु दिखाई देना शुरू कर दें, देह को देखते भी ना देखें, और सचमुच पार्ट तो सब आत्मा ही प्ले कर रही है। जब एकदम रूहानियत में टिक जाएंगे तब रिजल्ट क्या निकलेगी, तब आपकी विदेही स्थिति ऐसी बन जाएगी और मजा आ जाएगा। और विदेही स्थिति में आपका बीज है ना देह अभिमान सब विकारों का, तो बीज ही भस्म कर दिया आपने, और फिर वो भस्म हो गया तो कोई भी विकार आने की फिर हिम्मत नहीं करेगा, तो सब विकार खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी विदेही स्थिति का अभ्यास करें, इसका बारंबार अभ्यास करें। जब भी चलते हैं तो ऐसा समझे जैसे कि रथ चल रहा है, और रथ पे मैं सवार हूं रथी, और रथी निकल गया तो रह गई अर्थी। तो उसका है ना, तो ये तो रथ है, उस पे रथी महारथी बन के बैठ के साक्षी होके सारा ड्रामा देखें। इस विदेही स्थिति का अभ्यास, क्लास में बैठते हो ये नहीं सोचो इतने भाई बहन बैठे, कितने सितारे बैठे हैं, हम दौड़े दौड़े सब सितारे आए हैं, सब आके सब इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, हम सचमुच सितारों की दुनिया में रहते हैं, मैं खुद सितारा हूं ऐसा बार बार। बस ये अभ्यास आपके पुराने संस्कारों का बीज बिल्कुल भस्म कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है, जो थोड़ा सा मैंने वर्णन किया था, श्रेष्ठ संग, क्योंकि कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी धरणी वैसी करणी, ये सही कहावतें बनी हुई है ना। आप देखते हो मधुबन की धरणी पे आते ही एकदम संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। और बाबा की याद में पिया हुआ चार्ज किया हुआ पानी पीते हैं, मैंने देखता हूं बाबा के कमरे में काफी सारी बोतलें रखी होती है लेकिन खुद का स्काश ज्यादा चाहिए तो पीते हैं, उससे भी जो है काफी परिवर्तन होता है। अन्न बड़ा शुद्ध, अन्न का बहुत महत्व है संस्कारों से, जो खूब खाता जाएगा। ये नहीं कि जो चीज बाबा ने मना किया वो थोड़ी खाते हैं, अच्छा जो अलाउ किया है उसके लिए भी तो शिक्षा है, कम खाओ गम खाओ, ये तो नहीं वो खूब खाओ, खूब अच्छी तरह खाते जाओ, उससे भी विकार पैदा होंगे, उससे भी संस्कार पुराने संस्कार प्रज्वलित होंगे। चलो बाबा हठ योग नहीं कराते है? लेकिन बाबा ये तो कहते हैं कम से कम, और बाबा की याद में बाबा का भोजन क्या था, था लो फादर कर लो, छोटी छोटी बाबा की रोटी होती थी, थोड़ी सी सब्जी होती थी, मुश्किल से एक दो दो तीन, असुरों को कितना चाहिए, आठ रोटी छह रोटी पटापट खाएंगे, खाते जाए तो विकार ही पैदा होंगे, क्या होंगे। मधुबन जाके घर सेंटर पहुंच के भी यही अनुभव कहीं सुनाते, क्या अनुभव, क्या अनुभव, अजी वहां तो एक चाय की टूटी चल रही थी, एक मिठी चाय एक फिक्की चाय, एक मिठा दूध एक फिक्का दूध, एक मिठी कॉफी एक फिक्की कॉफी, अजी मौत स्वर्ग लगा पड़ा। तो क्या करते थे, कहते सारों का टेस्ट लेते थे बाबा के घर क्यों छोड़े, कोई चीज मिल रही है बताओ जी, अंदर संस्कार हबच खाने का, रे बाबा ने तो दिया, चलो किसी को ये चीज नहीं सूट करती, हर बच्चे का ध्यान रखा है, कोई एक ले लो पर वो भी लिमिट में ले लो, कहीं सोचते टूटियां चल रही हैं चलो चलने दो, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं, लेकिन उसकी हजार आंखें देख रही हैं क्या कर रहे हो, तो बड़ा टेंशन रखना है, कम से कम खाना है। हाँ, तो उससे क्या होगा, अपनी अपनी अवस्था पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो ये एक संग अच्छा रखो, अच्छे पुरुषार्थियों का टाइम लेके उनसे मिलते रहो, और इन चीजों का भी ध्यान रखो, अन्न का भी ध्यान रखो, डाइट हमारी बहुत मिनिमम हो तो बहुत अच्छी उसकी रिजल्ट होनी चाहिए। अभी कोई एक वरिष्ठ बहन मिल रही थी तो मैं 5 देशों की यात्रा पे होके आया हूं, कहते आप कुछ वेट रिड्यूस करके आए हो, मैं कहा बिल्कुल, मैं कहा क्योंकि मैंने संकल्प किया हुआ था वहां, तो वो संकल्प में पक्का रहा, खान पान में भी मॉर्निंग सलाद लेते थे, सुबह दिन में थोड़ा सा लेते थे, रात को केवल फ्रूट लेते थे, तो अच्छा रहा। मतलब हम संकल्प करें इनमें भी, और बाबा की याद में भोजन, ये सब चीजें हमारे संस्कारों को अवश्य परिवर्तन करेंगे। लास्ट में बताना चाहूंगा विजयी रतन, मतलब कि एक अंदर निश्चय रखें मैं विजयी रतन हूं, विजय तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं नहीं विजयी बनूंगा तो कौन? घबराओ नहीं, ट्राई ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई, मतलब आप अपने संस्कार से दुखी नहीं हो जाओ। मैं विजयी रतन हूं, मेरी अवश्य विजय होगी, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा 100% विजय मेरी होनी। ऐसा सोच के चलेंगे तो पुरुषार्थ भी अच्छा करेंगे और विजय भी मिलेगी और विजयी रतन बन जाएंगे उससे। मतलब कई बार दिलश्कस्त हो जाते हैं, एक भाई तो इतना दिलश्कस्त हो गया, क्या करूं मैं, 10 साल हो गया, पैसा भी लगाया, बाबा के यज्ञ में सब कुछ किया, रोज मुरली, मेरा ये देखो क्रोध नहीं खत्म हो रहा, मैं क्या बुला गया, इतना दिलश्कस्त हुआ कि ज्ञान ही छोड़ गया। फिर उसे बुलाया, फिर उसे समझाया, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जितना पहले क्रोध था उसमें तो कुछ फर्क, क्या वो तो फर्क आया लेकिन खत्म तो नहीं हुआ। मैं कह ठीक है चलो खत्म नहीं हुआ पर फर्क तो आया। क्या हाँ फर्क तो आया, कितना फर्क आया? कहते वो तो काफी आया, 60-70% आया, पर फिर कितना कोशिश करता हूं फिर 5-7 दिन बाद आ जाता है। चलो पहले से फर्क तो हुआ, 60-70% हुआ, और कोशिश करोगे 80% फिर 90%, एक दिन संपूर्ण विजयी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे दिलश्कस्त नहीं हो, पॉजिटिव बात देखो ना, मैं हूं ही बाबा का विजयी रतन, मैं नहीं विजयी बनूंगा तो और कौन बनेगा, मेरी विजय हुई पड़ी है, इसलिए घबराओ नहीं। तब बाबा ने कभी कितनी बार कहते बच्चे माया से घबराओ नहीं, व्यर्थ संकल्प की भी तूफान आए तो घबराओ नहीं तुम, और याद रखो क्या जिसका साथी है भगवान उसका क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। और दिन में 10 बार जरूर रियलाइज करो, क्या 1000 भुजाधारी बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है। क्या कहेंगे आप, तो इतना ऐसा कह रहे हैं लगता नहीं कि आपको इसका अनुभव हो, क्या कहेंगे? हाँ बस यही, 1000 भुजाधारी बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है। एक पॉलिटिशियन को ये पक्का कराया, उसने दिन में 10 बार कहता था, सभाओं में भी कहना शुरू कर दिया, 1000 भुजाधारी शिव बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात। आप विश्वास करेंगे कि वो 6 बार लगातार इलेक्शन जीतता रहा। उसके विरोधी कहते थे कि पहले इसके उस 1000 भुजाधारी को देखना पड़ेगा, वो कौन है जो इसे हर बार जिता देता है, इलेक्शन में हर बार यही बोलता, अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर है, पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर था, एमएलए का इलेक्शन हर बार जीत जाता है, और सभा में बोलता है 1000 भुजाधारी मेरे साथ है तो चित क्या बात है। तो देखो कैसे बाबा हैं, तो अज्ञानी संपर्क वाली आत्माएं भी इतना लाभ उठा रही हैं, तो बाबा के बच्चों को निश्चय पक्का होगा तो 100% विजय होगी, तो विजय ही रतन, ठीक है। अच्छा ओम शांति, अभी योग करेंगे ना, सब योग करो।
हमारा साथ। जैसे दी